पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले यूक्रेनियाइयों के लिए अस्थायी वीजा की घोषणा। भारत में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना मामले और चोट के संकट से जूझ रहा है ऑस्ट्रेलिया का पुरुष फुटबॉल खेमा। और अब खबरें विस्तार से। फेडरल सरकार यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों को अस्थायी वीजा प्रदान करेगी। ये वीजा 3 साल के लिए वैध होंगे और धारक को पढ़ने, काम करने और मेडिकेयर की सुविधा पाने की सहूलियत देंगे। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को ऑस्ट्रेलियाई सैन्य बल के कोष से अतिरिक्त सैन्य सहायता पहुंचाएगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया से कम 70,000 टन कोयला भी यूक्रेन को ऊर्जा पूर्ति के लिए पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा फेडरल सरकार ने रूस को होने वाले एल्यूमिना और एल्यूमिनियम अयस्क निर्यात पर रोक लगा दी है। इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि रूस की एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता को नियंत्रित किया जा सकेगा, जो कि रूस के सबसे अहम निर्यातों में से एक है। रूस की करीब 20% एल्यूमिना आवश्यकताएं ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर हैं। ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशंस ने विस्थापित यूक्रेनियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की मदद की घोषणा का स्वागत किया है। फेडरेशन का कहना है कि ये वीजा व्यवस्थाएं शरणार्थी यूक्रेनियों को पैर जमाने में मदद करेंगी और समुदाय से अलग अलग दल हर प्रदेश में इन शरणार्थियों को पुनर्स्थापित होने में आवश्यक सहयोग देंगे। एबीसी के इनसाइडर कार्यक्रम में बात करते हुए फेडरल वित्त मंत्री साइमन बर्मिंगम का कहना है कि सरकार भविष्य में भी हर संभव मदद करती रहेगी।
We have seen the terrible human toll and tragedy as Russia is violating international laws and showing complete disregard for women, children and human life. And that's why we are standing so strongly with the Ukrainian government and responding specifically to their requests wherever Australia can.
इसी के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस का भी निर्माण किया गया है, जहां देश भर से समुदायों द्वारा भेजी गई अस्थायी निवास की व्यवस्थाएं, घरेलू सामान, कपड़े और चिकित्सीय सहायता दर्ज की जाएंगी। एक पूर्व ट्रेड यूनियन नेता अब साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगले प्रीमियर होंगे। पीटर मेलेनोस्कॉस ने लेबर पार्टी का नेतृत्व करते हुए उन्हें संभावित रूप से साउथ ऑस्ट्रेलिया की 47 सीटों में से 27 पर जीत दिला दी है। उम्मीद की जा रही है कि लिबरल पार्टी अपनी 15 सीटें बचा लेगी और बाकी 5 निर्दलीय खाते में जा सकती हैं। लेबर पार्टी का प्राथमिक मत 8% बढ़कर 40.5% तक पहुंच गया है, जबकि लिबरल 34.6% पर खड़े हैं। 5 सीटों पर अब भी कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक डंकन भी है, जो अब तक सत्तासीन स्टीवन मार्शल की सीट थी। एडिलेड में श्री मेलेनोस्कॉस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महामारी को संभालने के लिए अपनाई गई द्विपक्षीय नीति अब भी बनी रहेगी।
The bipartisanship that has existed around COVID policy is something that I hope is maintained. Whether Stephen Marshall remains as the Liberal leader or someone else takes his place, I will be seeking to work with them collaboratively, and it would be my hope and indeed my expectation that they will show my government the same bipartisan support that I've shown theirs.
देश में कोरोना की परिस्थिति की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स में आज 16,134 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और 4 कोरोना मृत्यु दर्ज की गई हैं। राज्य में 1,124 कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 33 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। वहीं विक्टोरिया में 6,694 कोरोना मामले सामने आए हैं। राज्य में कोई नई कोरोना मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। 215 कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 21 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 5 शीर्ष फिल्म निदेशकों को इस साल ऑस्ट्रेलिया पोस्ट लेजेंड अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। उनके नाम की डाक टिकट भी जारी की जाएंगी। बैज लरमैन, जॉर्ज मिलर, गिलियन आर्मस्ट्रांग, पीटर वेयर और वॉरविक थॉर्टन ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स ऑफ फिल्म मेकिंग स्टैम्प संस्करण का हिस्सा बनेंगे। हार्मनी डे की एक शाम पहले यानी आज सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलियन नेशनल मैरिटाइम म्यूजियम में मॉन्यूमेंट टू माइग्रेशन पर 1,221 और नाम अंकित किए गए हैं। ये स्मारक उन प्रवासियों को सम्मान देने के लिए है जो अब ऑस्ट्रेलिया को अपना घर कहते हैं। हर साल इस कांसा मढ़ी दीवार पर नए नाम अंकित किए जाते हैं। इस दीवार पर 200 देशों से आए 30,000 से ज्यादा प्रवासियों के नाम अंकित हैं और पहली बार अफगानिस्तान, गेबन, सियरा लियोन और सोमालिया देशों के लोगों का नाम भी इस पर अंकित किया गया है। म्यूजियम 30 जून से पहले पहले स्मारक पर लिखे जाने के लिए नए नाम स्वीकार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी साइरो ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए प्रण लिया है कि इस दशक में वे देश में 80% तक प्लास्टिक कचरे को कम करेंगे। कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी साइरो का कहना है कि $50 मिलियन की लागत से विकसित होने वाली तकनीक ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक प्रयोग, पुनर्प्रयोग, रिसाइकिल और निष्कासन के तरीके को बदल देगी। ऑस्ट्रेलिया में एक साल में लगभग 1 मिलियन टन प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, जिसमें से लगभग 12% ही रिसाइकिल किया जा सका है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में हारे, क्योंकि उनकी विजय दुनिया भर में तानाशाही को ताकत देगी। श्री जॉनसन ने ये बयान ब्लैकपूल में हो रही कंजर्वेटिव पार्टी की कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया।
A victorious Putin will not stop in Ukraine, and the end of freedom in Ukraine will mean the extinction of any hope of freedom in Georgia and then Moldova. It will mean the beginning of a new age of intimidation across the whole of Eastern Europe, from the Baltic to the Black Sea. And if Putin succeeds in crushing Ukraine, it will be the green light for autocrats everywhere, in the Middle East, in the Far East.
पोप फ्रांसिस ने वैटिकन के बच्चों के अस्पताल में देखभाल पा रहे यूक्रेनियाई बच्चों से मुलाकात की। वैटिकन का कहना है कि अस्पताल में फिलहाल 19 यूक्रेनियाई शरणार्थी देखभाल पा रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने युद्ध की क्रूरता पर बात करते हुए यूक्रेनियाई बच्चों के घायल होने और उनकी मृत्यु पर विशेष दुख जताया है। और अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के कुल 1,761 मामले सामने आए हैं। कोरोना के दैनिक मामलों में कल के मुकाबले में 15% की कमी दर्ज की गई है। साथ ही बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के चलते 127 मौतें भी दर्ज की गई हैं। देश में सक्रिय मामलों में भी गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में 1,562 सक्रिय मामले कम हुए हैं। इस तरह से देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 26,240 ही रह गई है। भारत और जापान ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करने पर सहमति जताई है। इसके तहत ई वाहनों, बैटरी भंडारण और हरित हाइड्रोजन पर जोर दिया जाएगा। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई वार्ता के बाद भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर एक बयान जारी किया गया। वहीं दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री अप्रैल 2022 में भारत का दौरा करेंगे। एक जानकारी के मुताबिक यह यात्रा इजरायल और भारत के बीच संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर होगी। नफ्ताली बेनेट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर शनिवार 2 अप्रैल 2022 को भारत पहुंचेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनेट की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक गठबंधन को आगे बढ़ाना और मजबूत करना होगा। इसके साथ ही द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों देश के प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और विकास, कृषि और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा कर सकते हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी रविवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.39 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 74 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। आज मेलबर्न में एक निजी सभा में क्रिकेट दिग्गज शेन वॉन के मित्रों और परिवारजनों ने उन्हें अलविदा कहा। शेन वॉन के तीनों बच्चे, माता पिता और कुछ करीबी मित्र इस सभा का हिस्सा रहे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 30 मार्च को शेन वॉन के लिए एक राजकीय सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें जनसाधारण अपने इस प्रिय क्रिकेटर को अलविदा कह सकेंगे। दूसरी ओर वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के पहले ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल खेमे में चोट का संकट छाता नजर आ रहा है। सॉकर रूस के कोच ग्रैहम आर्नोल्ड पहले ही स्वास्थ्य संकटों से जूझ रहे हैं। वे 2 महीने में दूसरी बार कोरोना संक्रमित हो गए हैं और अब सेल्टिक मिडफील्ड सितारा टॉम रॉजिच को भी एड़ी में चोट आई है। सेल्टिक मैनेजर एंजी पोस्टेग्लू का कहना है कि अब भी उम्मीद है कि रॉजिच फुटबॉल वर्ल्ड कप के राष्ट्रीय अभियान में शामिल हो सकेंगे। सेल्टिक की रॉस कंट्री पर 4-0 की विजय के बाद पूर्व सॉकर रूस कोच का कहना रहा कि रॉजिच की ये चोट उतनी गंभीर नहीं लगती और वे एक छोटे आराम के बाद फिर अपनी टीम में शामिल हो सकेंगे।
It's one of those things where they could get injured training with us, so I don't worry about that too much. I think it's a great experience for them. I think it'll do them, the world of good to get away from the sort of routine club environment. I've obviously got a really important couple of months that they're refreshed and ready to go.
आने वाले गुरुवार को सॉकरू सिडनी में जापान के विरुद्ध बहुत जरूरी खेल खेलेंगे, जिसमें जीतने के बाद उनके कतर में वर्ल्ड कप खेलने का रास्ता साफ हो जाएगा। और अंत में एक नजर कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में भी अधिकांश रूप से धूप रहेगी, जहां अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में धूप छाव का मौसम रह सकता है, अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी कल धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बारिश के साथ तूफान की आशंका है, अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी, दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।